ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने उजूने सतत केवल ज्ञान पाने उजूने सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंड कुंड स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग अपने पूज्य पुरुषों की सेवा और प्राणी मात्र के उपकार के माध्यम से भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं। सेवा का जो उद्देश्य है वो हमारे अपने और दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने का होना चाहिए। ऐसी सेवा के पीछे निस्वार्थ भाव हो तो ही वो सेवा हमारे जीवन को और सामने वाले के जीवन को अच्छा बना पाती है। सेवा किसकी करनी चाहिए यह तो सभी लोग विचार करते हैं, लेकिन सेवा करने वाले का भाव कैसा होना चाहिए इस बात का विचार भी करना चाहिए। सेवा करते समय हमारे मन में कोई सांसारिक आसक्ति या कोई सांसारिक हमें यश ख्याति इस तरह की कामना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं कि सेवा का उद्देश्य यश अर्जित करना हमारा अपना लोगों में मान सम्मान बढ़े इसके लिए हम सेवा या कि दान करते हैं। मंदिर बनाएंगे, शास्त्र छपवाएंगे, मुनि जनों को आहार इत्यादि देंगे, ये सब सेवा के काम हैं, अच्छे काम हैं, लेकिन इन कामों के पीछे भी हमारा भाव भी अच्छा होना चाहिए। हमें ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना विशाल जिनालय बनाया या कि मैंने शास्त्र छपाए हैं या मेरे ही आहार दान से मुनि महाराज का मोक्ष मार्ग चलता है। ये अहंकार हमारी उस सेवा और दान को जो फल उसका मिलना चाहिए उसे शून्य कर देते हैं। हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव सेवा करते समय होना चाहिए कि हमारा और जिसकी सेवा की जा रही है उसका भला हो, उसका उपकार हो। सबका ध्यान, मेरा भी ध्यान उस तरफ चला गया। होता ही है, धर्म ध्यान करने के लिए वातावरण भी चाहिए। कितने कमजोर उपादान वाले लोग हैं हम कि छोटे छोटे से निमित्त भी हमारे अपने ध्यान में और थोड़ी सी मुश्किल तो डाल ही देते हैं। ऐसा हुआ एक बार कि गुरुजी ने स्कूल में बच्चों को समझाया कि बच्चों सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उससे स्वर्ग मिलता है। ये स्वर्ग क्या चीज होती, जहां बहुत सुख मिले वो स्वर्ग कहलाता है। उन्होंने कहा फिर तो बहुत अच्छी चीज है, तो हम सेवा करेंगे, मदद करेंगे दूसरे की। अब दूसरे दिन जब गुरुजी ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि तुमने कल कोई सेवा का काम किया, उन्होंने कहा हाँ किया, तीन बच्चों ने हाथ उठाए कि हमने सेवा का काम किया। अब पहले वाले बच्चे से पूछा कि बताओ बेटे तुमने क्या सेवा का काम किया, क्या उपकार किया, क्या मदद की, तो बोले गुरुजी जब हम यहाँ स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो रास्ता पार करने के लिए खड़ी हुई एक बूढ़ी अम्मा को हमने हाथ पकड़ करके और रास्ता पार कराया, सब लोगों ने ताली बजा करके उसके इस कार्य की सराहना करी। गुरुजी ने भी कहा बहुत अच्छा, शाबाश। बैठ गया वो, दूसरे से पूछा, भाई तुमने क्या मदद करी? बोले हमने एक बूढ़ी अम्मा को जो कि रास्ता पार करना चाह रही थी उसे हमने रास्ता पार कराने में मदद करी। हो सकता है कि ऐसी दो स्थितियां निर्मित हो गई हों। चलो तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, इसकी भी सराहना हुई। बैठ गया। जब तीसरे वाले से पूछा तो उसने भी कहा कि मैंने एक बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करवाने में मदद करी। तो भाई हुआ क्या? अब जब सारी बात समझ में आई तो क्या स्थिति निर्मित हुई कि पहले वाले ने जबरदस्ती, बूढ़ी अम्मा तो पार ही नहीं करना चाह रही थी सो उनको उस पार करवा दिया। अब फिर दूसरे वाले ने भी पुण्य का लाभ लेने के लिए बूढ़ी अम्मा को फिर इस पार करवा दिया, तीसरे वाले ने फिर उसी पार लगा दिया, सबने पुण्य कमा लिया। ऐसी वाली सेवा, ऐसी वाली मदद जो कि जिसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है कि मुझे पुण्य मिलेगा या कि मुझे सुख और भोग की सामग्री मिलेगी, संसार मिलेगा, ऐसे तो सेवा अपन लोग बात करते हैं। आज तो देखें अगर तो राजनीति में भी लोग जो है सेवा करने का क्या तरीका अपनाते हैं कि हम तुम्हें, हमें वोट दो हम तुम्हें कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो ऐसी वाली जो मदद है क्या वो सचमुच सेवा और दान कहलाएगी क्या? कुछ लोग जो है वो धर्मांतरण के नाम पर लोगों को कपड़े मुहैया कराते हैं, धन संपदा देते हैं, क्या धर्मांतरण के लिए इस तरह की जाने वाली मदद को हम सेवा या दान कह सकते हैं? और हम लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार देने वाले विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजते हैं बल्कि उन्हीं विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं जहां इस तरह के संस्कार डाले जाते हैं, जहां हाथ जोड़कर परस्पर नमस्कार की प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती, जहां क्रॉस बना करके और एक दूसरे के सम्मान की प्रक्रिया सिखाई जाती है, हिंदी में जिसके मायने हैं नंस के द्वारा चलाए जाने वाला आश्रम, उसमें हम बच्चों को भेजते हैं जिसमें पाश्चात्य सभ्यता सिखाई जाती है, जहां की किसी धर्म विशेष को ही श्रेष्ठ बताने के सारे उपाय किए जाते हैं, और नाम ये होता है कि कितना सेवा भावी हैं ये लोग, कितनी सेवा करते हैं। अरे भैया क्या सिर्फ रोटी कपड़े और मकान इन सब की मदद कर देने का नाम ही सेवा है? तब तो सेवा धर्म बहुत सस्ता धर्म हो गया। नहीं, वास्तव में तो सच्ची सेवा वो है जिसमें कि दूसरे को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। ये तो दूसरे को आपने कुछ चीजें भौतिक सुख सुविधा की सामग्री जुटा दी है, ये तो और आपने पराधीन कर दिया। वास्तव में तो सेवा वो है जिसमें हम व्यक्ति को स्वाधीन करते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिसमें हम उसे चारित्रवान बनाते हैं, नैतिक बनाते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति संसार में दुखी है, दीनहीन है, दरिद्र है, तो उसका कारण ये नहीं है कि उसके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है, नहीं, उसके पास अपना नैतिक कोई आचरण नहीं है। आज अगर वास्तव में सेवा करनी है, वास्तव में कोई उपकार करना है किसी का, तो एक ही उपकार हो सकता है कि उसे नैतिक रूप से समृद्ध बनाया जाए। लेकिन हम लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने को सेवा नहीं मानते हैं। हम तो चाहे व्यसनी भी हो उसके लिए कोई भौतिक सुख सुविधा की सामग्री जुटा देने को ही सेवा मान बैठे हैं। नहीं भैया, रत्नत्रय का दान देना ही सबसे श्रेष्ठ दान है। किसी की संसार में और श्रद्धा से विचलित होते को देखकर श्रद्धा उत्पन्न कर देना, किसी को आत्मज्ञान उपलब्ध करा देना, किसी को चारित्रवान बना देना, वास्तव में सेवा तो यही है। आज वर्तमान में देखा जाए तो इस देश में सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, इसमें अगर नाम आएगा तो हमारे आचार्य महाराज का आएगा, जिन्होंने रत्नत्रय की का दान देकर के स्वयं रत्नत्रय का पालन करते हुए आज कितने साधकों को जो है और रत्नत्रय के मार्ग पर आरूढ़ कर दिया है, उन्हें संसार के जो विषय वासनाएं हैं उनसे बचा करके और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर दिया है, नैतिक और चारित्रिक रूप से जिन्होंने उन्हें समृद्ध बनाया है, वास्तव में सच्ची सेवा तो वो सेवा कहलाएगी। हमें ऐसी ही सेवा के लिए आगे आना चाहिए। अकेले दो चार चीजें उपलब्ध करा दी भौतिक सुख सुविधा की और जय जयकार हो गई कि भैया इन्होंने तो बहुत दान दिया, इन्होंने तो बहुत सेवा करी। एक नेताजी वगैरह बैठे होंगे तो बुरा तो नहीं मानेंगे, मान भी जाएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, मान जाओ, हमारा कोई काम अटकने वाला नहीं। नहीं, मेरा आशय ये नहीं है, संसार में सब एक दूसरे का उपकार करके अपना जीवन जीते हैं, पर कभी कभी अपन जो उपकार करते हैं वो उपकार करने का अपना ढंग अपन समझ नहीं पाते हैं, जो प्रचलित हो जाता है अपन उसी ढंग से आगे बढ़ने लगते हैं। एक तो बात ये भी है, जिस चीज में हमें यश ख्याति मिलने लगती है हम उसी चीज को सोचते हैं कि यही चीज अच्छी है। वो जो नेताजी थे वो जेल में गए इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए, तो वहां पर कैदियों की स्थिति देख करके, आज के वर्तमान की जेल की बात नहीं कर रहे, पुराने जमाने के जेल की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप ये कहो कि वर्तमान, आजकल तो जेल में टेलीविजन भी है, मोबाइल भी है। हाँ, बता रहे हैं वो कि कैदियों के लिए तो फुल फैसिलिटीज हैं, जितनी भी हो सकती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वहां पर भी। तो उस समय उन्होंने देखा कि उस जेल में तो बड़ी बुरी हालत है, बहुत सारे कैदी बीमार सीमार हो गए हैं और कोई दवाई की ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, भाई हमारी तरफ से और हमारे कोष में से इन सबको औषधि इत्यादि वितरित की जाए। दूसरे दिन बिल्कुल बड़ा कवरेज हुआ, मीडिया ने तो बहुत कवर किया, पेपरों में निकला कि फलाने फलाने, और वहां पहुंचे नेताजी और उन्होंने इतनी बड़ी सेवा का काम किया, औषधि दी। दूसरे नेताजी ने सोचा कि ये तो आगे बढ़ गए, अपन क्या करें। तो 8-10 दिन के बाद उनने अपना भी टूर बना लिया जेल में जाने का। वैसे नहीं जाएंगे जेल में, ऐसे तो जाते हैं लोग जेल में। तो जेल में गए, देखा तो बोले वो सब ठीक है, औषधि वगैरह तो आपने दे दी, लेकिन ठीक से भोजन ही नहीं हुआ तो फिर औषधि क्या काम करेगी। हमारी तरफ से सबको बढ़िया से और आहार इत्यादि करवाया जाए, ठीक। दूसरे दिन पेपर में फिर कवरेज हो गया कि इन्होंने कैदियों को इतना भोजन इत्यादि अच्छी अच्छी चीजें बंटवाई। तीसरे वाले जनाब के मन में आया कि अब ये सब तो अपने अपने तरह से कर चुके हैं, थोड़ा महीने भर रुक करके वे भी जेल में पहुंचे, ठंड के दिन आ गए थे, उन्होंने सबके लिए कैदियों को कंबल बंटवा करके खूब यश लूट लिया। हो गया, एक सामान्य सा फकीर था, भिक्षु था, वो जेल के सामने से गुजरा और उसने कहा, भाई इन सबको जो भी अपराध की सजा मिली है वो ठीक है, ये अपने अपराध को स्वीकार कर ले वे और क्षमा मांगे तो इन्हें क्षमा दान देकर मुक्त कर लेना, कर देना चाहिए। मेरा तो यही आप लोगों से कहना है। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, न पेपरों में कहीं उसकी बात आई। उसी जेल में रह करके भौतिक सुख सुविधाएं जुटा देने वाले की जय जयकार है, लेकिन उन अपराधियों को अपराध से मुक्त करके और सच्चे मार्ग पर लगा देने की बात करने वाले का कोई उपकार नहीं माना जाता आज संसार में। किसी पक्षी से पूछो कि उसे पिंजरे में रखकर सोने चांदी की हीरे जवाहरात की कटोरियों में और मेवा मिष्ठान भी खिलाओ तब भी वो अपनी मुक्ति के लिए तड़पता रहता है, वो उसमें सुख नहीं मानता है। वास्तव में अगर सेवा है तो इस देह से देहातीत विदेह होने की जो प्रक्रिया बताए वही वास्तव में सच्ची सेवा है। हमें ऐसी ही सेवा और ऐसे ही दान या उपकार के लिए अपना मन बनाना चाहिए और ऐसा ही दान करना चाहिए। सेवा करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। आचार्य अकलंक देव स्वामी के चरणों में बैठे तो वो कहते परस्पर प्रीति बढ़ाने के लिए जो दिया जावे वो दान कहलाता है। दान की परिभाषा ये बनाई, परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, वात्सल्य बढ़ता है, जिस चीज के देने से वो वास्तव में दान कहलाए। हम लोग जब आज मुझे सारी चीजें, कल दीक्षाएं होने वाली हैं, वर्षों मुझे हो गए अवसर नहीं मिल पाया दीक्षाएं देखने का, क्योंकि दीक्षा देखते समय विशुद्धि बढ़ती है, जिनने दीक्षा नहीं ली उनकी बढ़ती है कि कभी अपन भी लेंगे, और जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी भी विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि जब दीक्षा के क्षण होते हैं तब वे बहुत विशुद्धि के क्षण होते हैं, तो जिसने ले लिया उसकी विशुद्धि बढ़ती है कि हाँ जब मैंने थी तो कैसे वैराग्य के भाव थे और कैसे सब जो है और व्यक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए थे, तो वो क्षण तो मुझे सब याद आ रहे हैं। कल दीक्षाएं वहां होंगी, कभी अपने को भी देखने का सौभाग्य मिलेगा। सन 1983 के बाद फिर सौभाग्य देखने का, दीक्षाएं मुनि दीक्षा देखने का, आरिका दीक्षाएं तो देखी, छुल्लक हेलक दीक्षाएं भी देखी, उसके बाद 1987 में ही बहुत बड़ा 23 दीक्षाएं हुई थी नैनागिर के अंदर, वो उस समय तो मुझे देखने का सौभाग्य मिल गया था, अभी कुछ वर्षों से ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। पर मैं याद कर रहा था कि हम लोगों का पहले एक डिसिप्लिन था संघ में, हम लोग उस समय 11 ही पीछे थी, उनमें मुनि महाराज तो आचार्य श्री के अलावा एक ही थे, समय सागर जी महाराज 1980 में जब 7 मार्च को और उनकी दीक्षा हुई थी, पहली एक ही दीक्षा हुई थी, फिर उसके बाद में 15 अप्रैल को फिर योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, इन दो की दीक्षाएं हुई, फिर हम लोगों की तो 1982 में जाकर के दीक्षाएं हुई। उस समय सब एलक छुलक थे, एक ही मुनि महाराज थे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आप लोग सेवा करने के लिए आते हैं रात में भैया वृत्ति करने के लिए, उसके पहले कभी कभी उसके पहले, और कभी ऐसा होता था कि जब सब श्रावक चले जाते थे उसके बाद, लेकिन रोज का क्रम था कि एक दूसरे की सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, माथा दबाएंगे, बड़े हैं तो उनके पैर दबाएंगे, छोटे हैं, का क्रम था। उसका हमने देखा कि परिणाम क्या होता था, एक दूसरे की सेवा करने से बड़ी विशुद्धि बढ़ती थी। अगर दिन भर में कदाचित कर्म के वय में एक दूसरे से कोई राग द्वेष भी हो गया है तो रात में माथा दबा दिया या पैर दबा दिया तो मामला एकदम विशुद्धि बढ़ गई, अब मन में कोई भी कषाय भाव या कोई भी राग द्वेष का भाव नहीं रहा। भैया सेवा तो ऐसी होती है कि जिसके करने से करने वाले का चित्त निर्मल हो जाता, जिसकी सेवा की जा रही है उसका चित्त निर्मल हो जाता। तो अपन को इस तरह की सेवा के लिए ही श्रेष्ठ मान करके ऐसी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। किसकी सेवा करें ये भी जरा सा ध्यान तो रखना पड़े। कहते हैं कि तीन ही सेवा के पात्र हैं मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। संसार में तो अपन अपने साधर्मी का जो बनता है वो उपकार करते हैं, उसे दान इत्यादि देते हैं, लौकिक जो दान है उनकी चर्चा अपन ने कल करी थी। हम देखें कि मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के रास्ते में और किसकी सेवा को प्रमुखता दी गई है, तो तीन ही पात्र हैं सेवा करने या दान देने के योग्य हैं, उत्तम मध्यम और जघन। उत्तम पात्र वे हैं जिनकी दृष्टि निर्मल है, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है और जिन्होंने भगवान के बताए हुए 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, वे उत्तम पात्र हैं, वे दान और सेवा के सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए उपादान हैं, जिनकी सेवा करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाते हैं। और जिन्होंने दृष्टि की निर्मलता प्राप्त कर ली, जिन्हें आत्मज्ञान भी है, लेकिन अभी जिन्होंने महाव्रत के स्थान पर देश व्रतों को अर्थात आंशिक रूप से अहिंसा सत्य चौरी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो आंशिक रूप से इनकी साधना कर रहे हैं, ऐसे देश व्रती ये मध्यम पात्र हैं और तीसरे नंबर पर उन्हें रखा है जो कि अभी व्रत नियम संयम तो धारण नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिनके भीतर दृष्टि की निर्मलता है, सच्ची श्रद्धा है और आत्मज्ञान भी है, अभी उन्होंने देश संयम या सकल संयम कोई भी सक्षम न होने से धारण नहीं कर पाया है, वे सब जघन्य पात्र हैं। उनकी भी सेवा, ये तीन ही हैं मोक्ष मार्ग में सेवा करने के योग। बाकी सब जिनकी हम सेवा करते हैं वो लौकिक कहलाएगी अगर करते हैं, तो हमें इतना ही ध्यान रखना कि कभी भी अपात्र को, ये सब पात्र हैं, इन पात्र के अलावा अन्य किसी को भी पात्र मान करके सेवा नहीं करना, बस इतना ही है। और कभी भी पात्र को अपात्र मानकर दया करके सेवा मत करना। हाँ, महावृत्ति अनुवृत्ति या कि जो दृष्टि संपन्न है ऐसे सम्यक दृष्टि, इन तीनों को मोक्ष मार्गी मान करके अत्यंत श्रद्धा से उन्हें दान इत्यादि देना, सेवा करना, दया करके नहीं। दया तो की जाएगी जो सामान्य जन है, अभी जिनकी दृष्टि निर्मल नहीं है, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो चारित्रिक रूप से और कोई व्रत नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए कि ये भी मोक्ष मार्ग पर लगे, ऐसी दया पूर्वक उनकी कोई मदद करना, वो उनको ऐसे मोक्ष मार्गी मान के नहीं करना, और मोक्ष मार्गी को दया से नहीं करना। दया सामान्य जीव पर और श्रद्धा मोक्ष मार्गी पर, ये स्पष्ट रहे पात्र और अपात्र का। इतना ही, कोई व्यक्ति अगर सामने वाला पात्र है या अपात्र है, ये हम बाद में देखें, पहले ये देखें कि हमारे भीतर पात्र और अपात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हाँ, ये पहले आवश्यक है। मैं पात्र किसे मान रहा हूं? मैं पात्र को पात्र मान करके दान देता हूं तो कोई हर्जा नहीं, मैं पात्र जो देने योग्य है उसको नहीं देने योग्य मान करके देता हूं तो भी ठीक नहीं है, और जो देने योग्य नहीं है उसे देने योग्य मान करके देता हूं तब भी ठीक नहीं। ये चीज जो है बहुत स्पष्ट अपने अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि रागी को रागी मान करके जो भी हम सम्मान देते हैं अलग है, लेकिन वीतरागी को तो, जो वीतरागी है उन्हें वीतराग मान करके ही हम सम्मान करेंगे। रागी को वीतरागी मान करके सम्मान नहीं करना, और न ही वीतरागी को रागी की तरह और कोई सांसारिक आकांक्षा से उनका कोई पूजा इत्यादि या अर्चना इत्यादि करना। ये इतना अपने मन में बात स्पष्ट रहे तो पात्र और अपात्र इन सब का हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं। मुख्य चीज है उसमें कि हमारे अपने परिणाम, एक दृष्टि विहीन व्यक्ति भी जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वह भी दान के माध्यम से और भोग भूमि जा सकता है, जाता ही है, और कहां जाएगा वो, उसके लिए वही उपाय है। लेकिन जो दृष्टि संपन्न है, आत्मज्ञान और श्रद्धान से युक्त है, वो अगर दान इत्यादि देता है मोक्ष मार्गी तो को, तो सिवाय स्वर्ग के अन्यत्र नहीं जाएगा, एकमात्र देवायु का ही बंद करें। कई बार कई लोगों के मन में ये आता है कि भैया क्या पता जी दान के पात्र हैं भी कि नहीं, नहीं तो हमारा और उल्टो हो कछु नुकसान न हो जाए। भैया, नुकसान तो अपने परिणामों से होत, कोई से कोई को नहीं होत, सीधी बात तो जाए। आपके परिणाम कैसे, आप अपने परिणामों के अनुसार ही फल पाएंगे। आपने किसे दिया है, क्या मानकर क्या सोच करके दिया है, इस पर निर्भर करेगा। आपने लौकिक दृष्टि से दिया है या कि अलौकिक पारमार्थिक दृष्टि से दिया है, इस पर निर्भर करेगा। आपके भीतर दृष्टि संपन्नता है या आप दृष्टि विहीन है, इस पर निर्भर करेगा। इसलिए ये चीज अपन को सावधानी रखनी चाहिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, दान में विशेषता तो उसकी विधि से आती है, देने वाली वस्तु से आती है, जिसे दिया जा रहा है उसके माध्यम से भी आती है, और देने वाले के परिणामों के माध्यम से आती है। इन चार बातों से दान की प्रक्रिया में विशेषता आती है। इस पर आचार्य भगवंतों ने बहुत स्पष्ट विचार किया है। विधि पूर्वक दान देना जो आगम की शास्त्रोक्त विधि है, नौदा भक्ति पूर्वक ही मोक्ष मार्गी को दान देना, भो स्वामिन अत्र अत्र, इस तरह प्रतिग्रहण करना, जिसको हम अपनी भाषा में परगाहन कहते हैं, प्रतिग्रहण निकट से ग्रहण करना अत्यंत श्रद्धा से कि पधारो भगवान, आप रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, इसलिए लाओ तो मन वचन काय से आपकी तीन प्रदक्षिणा डाल के हम भी रत्नत्रय की सेवा कर सके। और फिर उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन करके और माथे पर ग्रहण करना, पूजन करना, मन वचन काय और आहार की इन चार की शुद्धि बोलकर प्रणाम निवेदित करना, ये नौ बातें जिसमें हैं वो नौदा भक्ति है। ऐसी नौदा भक्ति से जो दान दिया जाएगा मोक्ष मार्गी को, वो दान विशेष माना जाएगा। और देखो, सब विधि बनाते हैं लेकिन सबके परिणाम अलग अलग हैं। नौदा भक्ति करने वाले 25 लोग हैं तो 25ों ने एक जैसी भी की होगी, तब भी सबके भाव अलग अलग होंगे, सबको दान का फल अलग अलग मिलेगा, जबकि 25 लोग खड़े हुए थे, जैसा जिसका भाव। कई लोग तो इंतजार करते हैं कि जब घरे आ जाएं, सुबह नहा धोके हो, कपड़ा पहन के दे दें, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना सवेरे से जितने तैयारी करके हमारे पीछे ही पीछे चल रहा हो, सवेरे से उसकी तैयारी। और जी तो अब जब आ गए हैं, सो अब दे लो, अब अपने ही आ गए, अब हो जाओ रही तैयार, बुला ली उनको दुकान से, बुला ली उनको इनसे, बुला ली इनसे, कर ली। पहले से तैयार तो नहीं थे वो दान देने के लिए, कि पहले से खड़े हैं, आएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका अपने घर के बाहर। तो कितना अंतर हो गया, देने वाले सब है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उलाहना नहीं दे रहा हूँ, आपको जैसा करना वैसा करें, मैं कौन होता हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे विशेषता आ जाती है। दिया सबने है लेकिन सबके परिणाम अलग अलग, और जिसके जैसे परिणाम, जिसने जैसी अपने परिणामों से विधि की है, उससे विशेषता आएगी। देने वाली वस्तु किस तरह से आप लाए हैं, न्याय नीति से कमाया हुआ दिया है या न्याय पूर्वक कमाया हुआ दिया है, इससे दान में विशेषता आएगी। आप जितना न्याय नीति पूर्वक कमा करके देंगे, उसमें थोड़ा सा अल्प भी देंगे, उसका फल ज्यादा मिलेगा। अन्याय पूर्वक किया होगा, बहुत अधिक मात्रा में भी दे देंगे तो उसका फल अल्प ही मिलेगा। त्याग का भाव है इसलिए थोड़ा फल तो मिलेगा, लेकिन आपने त्याग के पहले जो कुछ भी संपत्ति संचित करने में जो अपराध किया है, उसका फल तो एकदम नहीं कट जाएगा, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और दी जाने वाली वस्तु जिसे दी जा रही है उस पर कितना उपकार करेगी, इसका भी हिसाब होना चाहिए। हाँ, रोज रोज मुनि महाराज तो सबके यहां मेहमान ही है, और रोज हरुआ पूरी खावे तो हो जाने चाहिए चार ही दिना में सबरी साधना। हाँ, तो कहते कि ऐसा देंगे द्रव्य जिससे उनकी साधना बढ़े, सेवा और भैया वृत्ति तो वो कहलाएगी जिससे कि उनके साधना में बढ़ोतरी हो। ऐसा ना हो कि उस द्रव्य को देने से उन्हें और मन में आलस आ जावे, वे धर्म ध्यान की जगह पे आराम से सो जावे। तब हाँ, तब फिर वो दिया गया द्रव्य श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। श्रेष्ठ द्रव्य तो वही है जो उनकी साधना में बढ़ोतरी करने में कारण बने। तो ऐसा द्रव्य विचार करके जो देता है, उसका द्रव्य ही दान की विशेषता में कारण बन जाता। तो विधि द्रव्य दात्री अर्थात देने वाला किस तरह का है, 7 प्रकार के गुणों से युक्त हो देने वाला दाता। अब 7 कौन कौन से गुण है, श्रद्धा है, भक्ति है, विवेक है, अलोलता है, क्षमा है, संतोष है और अमात्सरी है। ये 7 गुण हैं देने वाले दाता के। अपन जी तो देखते हैं कि जिसे दिया जाना है वो गुणवान है कि नहीं, जावी तो देखें कि हम जो दे रहे हैं हमारे अंदर ये 7 गुण हैं कि नहीं। श्रद्धा, मुझे तो महाराज कोई भी आ जावे, त्यागी वृत्ति मेरे यहाँ आ जावे, वे भोजन काल लेवे, तब फिर मैं करूं, ऐसी अत्यंत श्रद्धा से भर करके दे रहा है, पहला गुण है दाता का। और फिर भक्ति, मेरे यहाँ जो भी आएंगे जब तक वे मेरे घर में हैं तब तक मैं उन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, उन्हें उनके स्थान तक भेज करके ही अपने अन्य सांसारिक कार्य करूंगा, ये भक्ति है। कमंडलू हाथ में लेकर पीछे पीछे उन्हें उनके स्थान तक भेज करके जाएंगे, सुख साता पूछ करके, तब ये भक्ति कहलाएगी। और विवेक, क्या चीज देने योग्य है क्या नहीं है, अभी क्या दी है, अब अभी तो रस दिया था, अब उस पर से दूध कैसे दें, अभी तो पानी दिया उसके ऊपर से रस कैसे दें, नहीं भाई ठहरो, विवेक पूर्वक दो। ये तो ऐसे हैं जैसे कि नहीं बोलने वाला पुत्र अपनी माँ पर निर्भर है कि वो जो विवेक पूर्वक उसे खिला देती है वैसा ले लेते हैं। कुछ भी नहीं कहेंगे कि वो चीज लाओ कि वो चीज दो, दोगे और नहीं चाहिए तो मना भर कर देंगे, बाकी कहेंगे नहीं कि ये चीज दो। तो इतना विवेक श्रावक रखता है कि क्या चीज साधना में साधक बनेगी उस विवेक पूर्वक देता है, चाहे जैसा नहीं। हाँ कि हम तो ले आए समाओ तो जो ले लो, अब चाहे वो नुकसान करे मनो ले लू। हाँ ऐसा आग्रह नहीं रहेगा, विवेक रहेगा। ठीक है जिसमें उनकी अनुकूलता है वो हम करेंगे। और फिर अलोलुपता, लोलुपता नहीं है। अरे महाराज तो हम तो सोच रहे थे कि थोड़ो सो ले ले हैं, बाकी हमारा बचो रहे हैं, इनने तो सब ही ले लो। ऐसा आ सकता है क्या भाव? आता तो नहीं होगा, देखने वाले को आ सकता, देने वाले को तो नहीं आता। लेकिन देखो ऐसी घटना भी है, अकृत पुण्य नाम था उसका धन्य कुमार का पहले, तो वो अकृत पुण्य ने, और जब मुनि महाराज की चौका लगा माँ ने कहा कि देखो बेटे महाराज आवे तो उनको रोक देना, हम पानी भर के आ रहे। माँ तो चली गई थी पानी भरने के लिए, और इधर महाराज आ गए, महाराज आ गए तो अब वो जाने लगी, तो उसने अकृत पुण्य रोक लिया था। ये महाराज ठहरो, जब आप खीर खा लोगे जब हमें मिलेगी इसे आप रुक जाओ। माँ ने खीर बनाई है, अब वो क्या जानेगा, पड़गाना वड़गाना, छोटा बालक था 10-8-10 वर्ष का, पैर पकड़ लिए उतने में माँ आ गई वो कलश भर करके, तो कलश से और पड़गान कर लिया। और अब अकृत पुण्य जिसको कि बहुत दिन के बाद खीर खाने मिली थी, क्या विचार करता है, थोड़ी सी खा ले वे महाराज, पूरी फिर मैं खाऊंगा। ऐसा जरा देर उसको विचार आया, फिर उसके बाद जैसे ही महाराज का आहार शुरू हुआ फिर मन ही मन सोचता है एक ग्रास देने के बाद कि यही ले ले वे, ये पूरी खा ले वे, मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा विचार आने लगा उसके मन में, और देते चले गए महाराज ने, जितना ग्रहण करना था लिया, महाराज चले गए। लेकिन वे तो रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, जिस कटोरे में से जिस पात्र में से दी गई थी सामग्री खीर, वो कभी खाली नहीं होने वाला स्थिति बन गई। और उतने से भाव के द्वारा अकृत पुण्य को आगामी जीवन में धन्य कुमार की पर्याय की जहां हाथ लगाया वहां से संपदा ही मिलती थी। देने अकेले का परिणाम ये था, जरा से भाव की पूरा ले ले, अलोलुपता होनी चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, अमात सरिये, दूसरे दाता से ईर्ष्या न होनी चाहिए। जी आ गए हम आए थे, हमारा तो चौका, हम तो सवेरे से काम में लगे और जी आ गए देवी। ऐसा भाव मन के भीतर आया तो आपका दान देने का सारा काम व्यर्थ हो गया। अरे वो अपने घर का रईस आदमी है, आपके बुलाने पर भी नहीं आता, यहाँ तो बिना बुलाए और आपके घर की सीढ़ियां चढ़ते सीधे ऊपर आ गया है, आपके लिए तो मेहमान की तरफ तरह है, आपको तो कहना चाहिए था पधारो, आप हमारे बिना बुलाए हमारे घर में आए, सौभाग्य मुनि महाराज के आने से आए हैं आप, नहीं तो कौन हमारे घर की सीढ़ियां चढ़ने वाला था जो फटाफट चढ़ते चले आ रहे। ऐसा बिना मात्सरी के दूसरे दाता से कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, प्रेम भाव है कि आओ सब साधर्मी आओ, हमारा सौभाग्य सामग्री तो हमारी ही दोगे, अकेले देने का काम कर रहे आप तो भाव बना रहे हैं, इसलिए आपको भी लाभ, सामग्री तो मेरी है, मेरे तो पूरे देने के भाव है ही। ऐसा हमार शरीर जिसके भीतर, और इतना ही नहीं, अब हमारे तो अब अभय हैं, 20 दिन हो गए, उनके तो पहले ही हो गए थे, अब ले भय भी और कछु सार ने भाव, देने का लाभ भी मिला लेकिन भीतर में दूसरे दाता से ईर्ष्या है कि इनके यहाँ पहले हो गए, हमारे तो इतने दिन बाद हुए हैं। विचार ये करना चाहिए कि हमारा सौभाग्य कि इतने दिन हमें शुद्ध भोजन करने का अवसर मिला। एक ही व्यक्ति मिला मुझे विदिशा के अंदर, जिनके यहाँ पर जब आहार थोड़े समय हो गया, 8-10 दिन हो गए नहीं हुए, तो किसी ने उन पर व्यंग किया कि इतने तो जाते हो महाराज के पास, इतना तो तुम्हारा परिचय हो, तुम ही रहते इतनी देर लग रही, ऐसा कहने वाले भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते भैया, ऐसा नहीं है, बड़ा मैंने करने धर्म ध्यान करने वाले हो, कदम कदम पे कोई ना कोई आती है, बाधा आती है, यही तो पंचम काल है। तो वो कहने लगे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम एकलाने थोड़ी महाराज के पास जा सेवा में कि हमारे तजदी आ जावे, हमारा तो सौभाग्य मानते, हम तो कहते और देर से आवे। तो भी कहने लगे क्यों आप ऐसा क्यों सोचते, कहने हमारे मन में तो बहुत दिन से था कि शुद्ध भोजन करेंगे तो घर में सुविधा नहीं बन पाती थी, अब तो चौका लगा है, हम तो सोचते कि अगर कहूं जल्दी महाराज आ जाए तो वही बंद हो जाए, हम तो कहते कि ज्यादा देर में आवे तो हम शुद्ध तो खाएं जब तक। अब देखो ये भाव है, सुन के यहां पर जल्दी जल्दी हो गए, हाँ आश्चर्य हुआ सबको जल्दी जल्दी, और कोई सोचा जल्दी तो हो जाते, अब जल्दी निपट जाते तो हो जाते बंद, तो जितनी आकुलता उतनी देरी। आप अपने अनुभव से देख लेना, कोई छुपी हुई लुंगी हुई बात नहीं है, जितनी आकुलता जितना होगा कि जल्दी हो जाते उतनी ही बाधा आएगी, उतना ही कर्म बंधेगा। सैकड़ों उदाहरण इस तरह के हैं, किसी दाता से और दूसरे से मात्सरी नहीं रखना, बल्कि हर्षित होना अमात्सरी, और फिर कहते संतोष रखना, जो भी आ गए उसी में संतोष है, त्यागी वृत्ति है, ब्रह्मचारी जी मिल गए हैं कोई बात नहीं, शुल्लक एलक जी हैं तो वो आ गए हैं, पहले नंबर तो आकांक्षा क्या होगी, जब आचार्य के संग में अपन जाते हैं तो क्या आकांक्षा होती, आचार्य महाराज आ जावे, और आचार्य महाराज सामने से मुस्कुराते हुए निकल गए। अब भी समय सागर जी बड़े हैं भी आ जावे, अब भी समय सागर जी भी निकल गए, अब नियुक्त सागर जी आ गया, अब को नहीं आवे भी अपने महाराज आ जाए, अपने चतुर्मास भाव तो भी आ जाए, अब ले अब वे नहीं है उनका ही भाव, अब वो भी नहीं आए तो फिर अब कोई और मुनि महाराज निकल जाते तो सोचते माता जी आ जावे, इलक छुलक जी आ जावे, कोई न होवे भैया दौड़ो, अब त्यागी बेटी तो बैठी हुई उन्हें खुला लिया, कैसा भाव है, जो भी आवे संतोष है कि कोई भी त्यागी वृत्ति को हम पहले आहार कराएं फिर उसके बाद हम भोजन करें, ये भाव ये कहलाता है संतोष। और आगामी तुष्टि, तुष्टि अर्थात आगामी किसी भी फल की आकांक्षा नहीं है, मुझे दान देने से आगामी जीवन में बहुत जो है भोग विलास की सामग्री प्राप्त होगी, सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, इहलोक और परलोक में कोई मुझे वस्तु प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा से रहित हो करके ऐसे भाव से दान दिया जाता, ये दाता की विशेषता है, और पात्र की तो अपन ने समझी है कि उत्तम मध्यम जगन जिस प्रकार का भी पात्र होगा उसके माध्यम से अपनी वैसी ही विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि के माध्यम से वैसा ही अपने दान में विशेषता आ जाती है। भैया जितने अच्छे परिणाम हो उतना ही दान श्रेष्ठ है, सब बातों का विचार करने के बाद और एक ही बात अंत में आती है कि हम जो भी कार्य करें, सेवा का कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं या और भी कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छा भला, उन सब के पीछे एक ही चीज है कि हमारे जितने परिणाम निर्मल होंगे उतना उसमें विशेषता आएगी, या कि हम उसके माध्यम से अपने जितने परिणाम और निर्मल बनाएंगे तब उससे हमारे जीवन में विशेषता आएगी। दान की ऐसी ये प्रक्रिया अपन को अपना करके और अपने जीवन में, हमने वो उदाहरण आपको शायद प्रश्न उत्तर में सुना दिया था इसलिए फिर मैं सोच रहा था, पर उसमें सब लोग नहीं आए होंगे, एक मिनट और लगेगा, वो नैनागिरी की घटना 1978 की, हम उस समय गृहस्थी में थे, हमने कहा भी था कि जी अपने इतनी जो 2-3 जने चौका लगाऊ थे वे सब जने थे वहां पर अशोकनगर के, तब से परिचित हैं सन 78 में, तो उनके चौके में भी कभी कभी चले जाते थे, खड़े हो जाते थे। अब उसमें देखा कि वो नैनागिरी की पहली धर्मशाला बन गई थी नई वाली, और फिर बाद में दूसरी तो थी और तीसरी तो बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, मानो तीनों में चौके लगते थे, जिनने नैनागिरी गए होंगे देखा होगा, तो उसमें सब लोग जो है पहली धर्मशाला के पास सही और लाइन लगाकर सीधे खड़े हो जाते थे, तीसरी धर्मशाला तक तो कोई ने खड़े हो तो पहले ही नंबर बाहर है, जिनमें पहले ही महाराज आवे और हम पड़वा लें, रहता सबका भाव रहता। अब आचार्य उठते थे और निकलते, तो एक दिन आचार्य निकले और सब खड़े हैं, भो स्वामी नात्रो आत्रो, भो स्वामी हमारे घर पे, हमारे घर पे, सब कहते आशा और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए होती है चर्या, आशा तो सबको है कि भो स्वामी नत्र, बुराई किसी से नहीं है, लेकिन राग द्वेष जिसमें न होवे ऐसी चर्या, बहुत कठिन काम है, कड़ा काम है, ये नहीं समझना आप यहाँ हाथ आया फिर उसके बाद में शत्रु मित्र सब बराबर है। अबे कितो कर लो आप हाथ जोड़ लो के कह लो के इतो और उतनो, फिर एक बार जहाँ भगवान के सामने माथा झुका करके निकले तो फिर तो सब बराबर हैं, जिसका भी होगा आज चले जाएंगे, क्या करना है। ये सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है, आशा की निवृत्ति और राग द्वेष का परिहार, ये दोनों चीजें जिसमें हो वो है चर्या। आहार की चर्या भी दिगंबर साधु की लगती सीधी है, क्योंकि सहज भाव से हो जाती है, और जब जब मुश्किल आती तब समझ में आता कि इतनी सरल नहीं है। बाधा जब आती है तब समझ में आती है। अब अचैषी चले जा रहे हैं, सब कह रहे हैं भू स्वामिन चले गए, अब पहली धर्मशाला से निकल गए, दूसरे से निकल गए, अब कहां जा रहे हैं, सब तो चौका वाले तय खड़ी, अब महाराज कहां जा रहे हैं। महाराज ने सोच लिया था कि जो अपने कमरे के बाहर द्वारापेक्षण करेगा, अपने द्वार पर अपेक्षा कर रहा, द्वारापेक्षण तो वही कहलाएगा कि अपने द्वार के बाहर खड़े होकर अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करना, द्वार पर वो द्वारापेक्षण, तो वहीं जो खड़ा होगा वहां जाएंगे, जो आगे आगे आ गए होंगे नहीं जाएंगे, वो चले गए। वहां पर एक वृद्ध और वृद्धा दोनों जन खड़े हुए, हे स्वामी यात्रो वात्रो है, आचर्षी जाके खड़े हो गए। अब सब जने चकित, कब जी का करवाएंगे यार, इनके दूध नहीं आने, फल फूल आए ने कछु आए, तो अपन सब जने ले चलो। लेकिन आचर्षी ने भीतर जाकर के देखा, सारा सामान स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, ये 8-10 ठो रोटी है, ये सामग्री है जो भी, तो आचर्षी ने फौरन विचार कर लिया कि दो प्राणी ये है और तीसरा अधिक है, किसके जिम्मे कितनी कितनी आई, हाँ उतना विचार कर लिया उतना ही ग्रहण करूंगा, और कोई भी सामग्री बाहर की, क्योंकि उससे हो सकता है कि दाता को हाँ संक्लेश हो सकता है, जो सामग्री उसने नहीं बनाई और कदाचित किसी और के यहाँ से आकर के ले ली, तो उस दाता के मन में आ सकता है कि अरे देखो हम बना लेते, हमने नहीं बना पाई, महाराज ने तो ये सामग्री ग्रहण की, ऐसा भाव आ सकता, बहुत सावधानी रखना पड़ती, औषधि की बात अलग है भैया, हाँ लेकिन बाकी सब चीज मैंने बहुत विवेक पूर्वक चलना पड़ेगा, राग द्वेष ना हो ऐसी क्रिया है, फिर भी हो जाता। अब देखो धर्म सभा है, हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर तो उसमें विचार करने की, अपन मुख्य बात पर विचार कर रहे थे कि आचार्य महाराज ने चली गई, खत्म हो गया। ओम शांति, आ गई लाइट, वाह वहां से गई थी मतलब। तो क्या हुआ कि आचार्य ने नहीं लिया, जो उनके यहां पर था वो आनंद पूर्वक ग्रहण किया और सीधे जाकर के और पहाड़ पर और ध्यान में बैठे, तो बैठे ही सामायिक के लिए। अब 2:30 बज गया, आचर्षी सामायिक से ही नहीं उठे, और घंटी बजाई जाती थी क्लास की, तो क्लास की घंटी 2-2 बार बज गई, 2:45 बज गए, खूब घंटी बजाई कि अब सामायिक का समय तो पूरा हो गया, आप क्लास लेंगे आचर्षी स्वाध्याय कराएंगे। बड़ी मुश्किल में आचर्षी 2:45 बजे के लगभग ध्यान से उठे, स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय कराने के बाद बोलते हैं कि आज तो सबने बार बार मुझे ध्यान से उठाने की कोशिश की, इसलिए मैं उठ गया, आज तो देने वाले दाता ने कितनी विशुद्धि से और क्या चीज दी है जिससे कि ध्यान में इतनी विशुद्धि और एकाग्रता आई। और सब जने जा सोच रहे थे कि भी कछु दे नहीं पाए, सो महाराज ने प्रायश्चिता कर लो, देखो अपने मन की बात है। लेकिन ये उदाहरण इस बात का सूचक है कि दी गई चीज और देने वाले का भाव दोनों ही दान को श्रेष्ठ बनाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज देने वाला भी और अच्छे परिणाम न होवे तो वो दी गई चीज सार्थक नहीं है, थोड़ी सी चीज भी अच्छे विशुद्ध भाव उसने दी जावे तो वो ज्यादा सार्थक है। भैया ऐसी अपने यहाँ पर सेवा और दान की प्रक्रिया है, इसको बढ़ा करके और अपन को अपने कल्याण करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख।